नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सिक्के पर भारत माता की तस्वीर है।
मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल विजयदशमी का पर्व है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरएसएस लोगों में राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक जागरूकता की भावना जगाता है। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ के कार्यों और गतिविधियों को देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि अनुमानों को संशोधित कर 6.8% कर दिया है। इसने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रा स्फीति का अनुमान भी 2.6% रखा है, जो पहले के अनुमान से कम है। इस बीच आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से सीपीआई बास्केट में कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आधारित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए देश में एक नवाचार इकोसिस्टम बनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग दिवस 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा बजट के संरक्षक के रूप में लेखा विभाग अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लाभों को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक प्रगतिशील कदम है और इसका रक्षा क्षेत्र में खरीद पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। कल ताशकंद में आयोजित आतंकवाद प्रतिरोध पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल वत्स दिसंबर 1988 में भारतीय सेना की 19 कमाऊ रेजिमेंट में शामिल हुए थे और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट के रूप में कार्य किया। वे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने आज अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने नए संयुक्त सैन्य ढांचों के निर्माण में सहयोग दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा योजना के साथ परिचालन सामंजस्य और रक्षा नियोजन देश की मजबूती को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि ये सशस्त्र बलों और उच्च रक्षा प्रबंधन के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उत्तर रेलवे ने त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कल से 8 अक्टूबर तक जम्मू से 16 ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस साल अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।